तब अरमान ने रश्मि से सवाल करना शुरू किया, क्या हुआ इसे? अभी तो ये ठीक ठाक थी और अब अचानक बेहोश कैसे हो गई? रश्मि अरमान के सामने खड़ी हो गई। तुम मुझसे पूछ रहे हो उसे क्या हुआ है? क्या किसी बीमार इंसान को कोई इतनी तेजी से पकड़ कर ले जाता है? हम्म, और तुम उसे आराम से भी तो अपने साथ ले जा सकते हो। रश्मि के ये कहने पर अरमान थोड़ा छेप गया। ठीक है, मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ। आई थिंक अब तुम्हें अपने बाकी पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए। अरमान जल्दी से रश्मि को वापस भेज देना चाहता था। अरमान के इस तरह से बोलने पर रश्मि आस्था के बारे में सोचने लगी। ओ माय गॉड, पुअर सिस्टर, तुम्हें भी क्या दुनिया के सभी मर्दों को छोड़कर शादी करने के लिए यही मिला था? कहीं ना कहीं रश्मि को मन में आस्था के लिए काफी बुरा लग रहा था। अरमान समझ चुका था कि उसके इस तरह से खींचकर ले जाने के कारण आस्था बेहोश हो गई थी। उसने फटाफट से आस्था को गोद में उठा लिया। उसने सबके सामने आस्था को गोद में उठाया। रश्मि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई, वहीं आस्था थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी। लेकिन अरमान और आस्था को इस बात का दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि कोई उन्हें इस वक्त एक जोड़ी आंखें गुस्से और नफरत से देख रही थीं। वो आंखें वीर रायचंद की थीं, जिसने अपने आदमी को मारने के चक्कर में खुद को काफी हर्ट कर लिया था। उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा था। अपने हाथ पर पट्टी वगैरह करने के बाद उसकी नज़रें सीधा अरमान सिंघानिया पर गईं। वीर रायचंद की नज़र जैसे ही अरमान सिंघानिया की खूबसूरत बीवी आस्था सिंघानिया पर पड़ी, वो अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था। वो सोचने लगा, क्या किस्मत है इस इंसान की, दुनिया भर की दौलत, इतने सारे प्रोजेक्ट्स इसके, इतना ही नहीं सबसे खूबसूरत औरत भी इसके पास। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इससे उसकी सारी दौलत तो छीन लूंगा और इसकी खूबसूरत बीवी को भी छीन लूंगा। आस्था को देखते हुए वीर रायचंद कुछ अलग ही तरह के प्लान बनाने लगा था और गुस्से में एक बार फिर अपने घर के लिए निकल गया था। वहीं दूसरी ओर अरमान ने आस्था को बड़े ही आराम और सावधानी से पीछे वाली सीट पर बैठा दिया था। वो उसके बराबर में आकर बैठ गया था और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। गाड़ी सिंघानिया मेंशन की ओर लेकर चली। आस्था काफी हद तक ठीक थी, लेकिन खुद को काफी ज्यादा कमजोर सा महसूस कर रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर वो इस तरह से चेंजिंग रूम में कैसे अटक सकती है। वो अरमान की ओर तिरछी नजर से देखते हुए सोच रही थी, क्या मुझे इस खड़ूस से पूछना चाहिए कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था? नहीं नहीं, अगर मैं इसे कुछ भी सवाल करूंगी तो पक्का ये मुझे कुछ ना कुछ उल्टा जवाब ही देगा। तो इससे अच्छा है कि मैं घर जाकर ध्रुव जी से पूछ लूंगी, या आकाश भैया, सुमित भैया से पूछ सकती हूँ। एक बार फिर से उसने अपने कान्हा जी को याद किया। अरमान की नजरें उस वक्त अपने फोन की स्क्रीन पर थीं। वो अपनी मीटिंग्स की टाइमिंग चेक कर रहा था। उसने अपनी मीटिंग्स का टाइमिंग रात के 2 बजे के बाद का रख लिया था, क्योंकि उससे पहले उसे कुछ स्पेशल लोगों से मिलने के लिए अपने फार्म हाउस पर जाना था। अरमान सिंघानिया ने अपना फार्म हाउस शहर से काफी दूर बिल्कुल सुनसान जगह पर बनवाया था, जो बड़ा ही खूबसूरत था। वहां पर अरमान सिंघानिया के अलावा केवल उसके दोस्त और भाई ही आ सकते थे। उसके अलावा किसी को भी उस अनजान जगह के बारे में दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं था। अरमान का इरादा आस्था को घर छोड़कर सीधा अपने फार्म हाउस के लिए जाना था। उसने ड्राइवर को जल्दी से फास्ट गाड़ी चलाने के लिए कह दिया था। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। आस्था, जो कि बेख्याली से बैठी हुई थी, अचानक से उसका सर आगे वाली सीट पर लग गया था। अरमान ने सोचा कि शायद उसकी तबीयत फिर खराब हो गई है। उसने फटाफट से आस्था के कंधों को पकड़कर उसका सर उठाकर उसकी ओर देखा। आस्था अपना सर मसल रही थी जहां उसे चोट लगी थी। अरमान ने उससे कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? अरमान ने सख्त आवाज में ये पूछा। आस्था उसे गुस्से से घूरती रह गई। कहीं ना कहीं अरमान की वजह से ही उसे चोट लगी थी। उसने अरमान को कोई जवाब नहीं दिया था। आस्था के कुछ न बोलने पर अरमान और भी ज्यादा इरिटेट सा हो गया था। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? मैंने पूछा तुम ठीक हो। आस्था चुप थी। उसे अरमान से बात करने का कोई इरादा नहीं था। अरमान उसके बारे में जिस तरह की राय रखता था, वो आस्था को काफी बुरी लगती थी। वो अब अरमान से किसी तरह की कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा था। 2 बार पूछने पर भी आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। अरमान चिढ़ चुका था। उसे इस तरह से किसी के नखरे उठाने की आदत नहीं थी। उसके हुक्म पर सारे काम चुटकियों में हो जाया करते थे। वो सोच रहा था कि आस्था भी उसकी एक सर्वेंट है, उसे उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। आस्था ने अरमान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरमान ने उसके बाजू को एक बार फिर कसकर पकड़ लिया था और उसे अपनी ओर खींच लिया था। आस्था खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधा अरमान के सीने से जा लगी थी। कुछ पल के लिए अरमान आस्था की फ्रेग्रेंस में पूरी तरह खोसा गया था। आस्था को उस वक्त काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। अरमान ने जिस जगह से उसे पकड़ा था, उस जगह से उसने तब भी पकड़ा था जब वो उसे अस्पताल से बाहर लेकर आ रहा था, तो पहले ही वहां आस्था को दर्द हो रहा था। लेकिन अब एक बार फिर उसके उस बाजू में फिर से जोरों से दर्द हुआ। एक हल्की सी आह उसके होठों से निकल गई थी। अरमान के ड्राइवर को पीछे से आस्था की हल्की सी चीख की आवाज आई। उसका दिल किया कि एक बार पीछे देखे कि क्या हो रहा है। उनके बॉस के कार में फर्स्ट टाइम इस तरह से अकेली लड़की के साथ थे। इस तरह की आवाज आने से उसके मन में क्यूरियोसिटी जाग उठी थी कि आखिरकार पीछे क्या हो रहा है। उसने डिसाइड करके पीछे का व्यू मिरर वे देखने की कोशिश की।
तो जल्दी ही उसे दो जलती हुई आंखें दिखाई दी थी। उस ड्राइवर का गला पूरी तरह से सूखने लगा था। उसने रोड थोड़ा सा साइड करके गाड़ी रोक दी थी। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए, ऐसा कहकर वो जल्दी ही वो गाड़ी की चाबी उसी में छोड़कर वहां से भाग गया था। अरमान उस ड्राइवर को इस तरह से भागता हुआ देखकर एक सीक्रेटली स्माइल करने लगा था। वहीं आस्था, जो कि दर्द में थी, अचानक से गाड़ी रुकने पर और साथ ही ड्राइवर के इस तरह से बोलने पर पूरी तरह से शॉक्ड हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिरकार इतनी जल्दी हुआ क्या और ड्राइवर बीच सड़क पर गाड़ी छोड़कर कहां जा रहा है। उस ड्राइवर को गए हुए कुछ ही सेकंड हुए थे कि अरमान के गार्ड्स वाली गाड़ी में से एक गार्ड वहां आया था। वो सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। बॉस, उस ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और सीधा फार्म हाउस के लिए भेज दिया गया है। अरमान केवल एक तिरछा सा मुस्कराया था। उसने किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया था। उसने जल्दी ही गाड़ी के पार्टीशन ऑन कर दिए थे और फिर आस्था की ओर देखने लगा था। आस्था अभी तक इसी कन्फ्यूजन में थी कि अचानक से हुआ क्या। वो सोचने लगी कि इस आदमी ने क्या कहा कि उस ड्राइवर को फार्म हाउस भेज दिया गया है, और इतनी जल्दी इन लोगों ने इस ड्राइवर को पकड़ क्यों लिया। आखिरकार ड्राइवर ने गलती क्या कर दी। आस्था अभी तक इस सोच में गुम थी। अरमान को अभी भी उस ड्राइवर का साइड मिरर में से आस्था को देखने की कोशिश करना याद आ रहा था। उसकी मुट्ठी आस्था के हाथों पर कसती जा रही थी। वो उस वक्त गुस्से में उस ड्राइवर को याद कर रहा था, लेकिन इस बीच वो आस्था को हर्ट कर रहा था। उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा।
आस्था की दर्द हद के पार हो गई। उसने जोरों से रोना शुरू कर दिया था। उसके आंसू जल्दी ही अरमान के सीने में गिरने लगे थे। आस्था के रोने की वजह से अरमान की शर्ट पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। वाइट रंग की शर्ट पहनी थी। आस्था के आंसुओं से उसकी शर्ट ट्रांसपेरेंट हो गई थी। आस्था को अरमान का जिस्म एकदम लोहे के समान दिखाई देने लगा था। आस्था को रोते हुए देखकर अरमान को एहसास हुआ कि उसने गुस्से से आस्था के बाजू को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ लिया है। उसने आस्था को एक पल में अपने आप से दूर कर दिया था और खुद ठीक से होकर बैठ गया था। आस्था के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द पड़ गया था। एक तो उसी हाथ में उसे नीडल लगी थी। अरमान ने इस हाथ को काफी तेजी से पकड़ लिया था। वो काफी ज्यादा दर्द महसूस कर रही थी। अरमान आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर सोच रहा था, क्या ये लड़की अपना रोना धोना बंद नहीं कर सकती है। किसी भी पल सिंघानिया मेंशन पहुंचने वाले थे। वो नहीं चाहता था कि दादाजी या उसके दोस्त या भाई ये देखें कि आस्था रो रही है या फिर उसने आस्था को हर्ट किया है। वो समझ चुका था कि इस लड़की ने अपने फरेब के जाल में उसके दादाजी को और उसके भाई जैसे दोस्तों को फंसा लिया है। वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोला, बंद करो अपना रोना धोना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ये बेकार की नौटंकी मेरे सामने मत किया करो। याद रखना, तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपना ये रोना धोना बेकार में वेस्ट कर रही हो। अरमान की ये कहने पर आस्था ने रोना तो बंद कर दिया था, लेकिन वो सुबकने लगी थी। अरमान बोला, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश मत करना, समझी तुम। आस्था ने केवल एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी। उसने अरमान को फिर से कोई जवाब नहीं दिया था। अरमान ये नोटिस कर रहा था कि आस्था उसकी ओर देखने में उसके साथ बोलने से कतरा रही है, या फिर शायद वो उसे इग्नोर कर रही है। अरमान मन ही मन में सोच रहा था, इस आफत ने इतनी हिम्मत की अरमान सिंघानिया को इग्नोर करे, आखिरकार अपने आप को समझता क्या है। इससे पहले कि अरमान एक बार फिर आस्था को डांटने की कोशिश करता, ड्राइवर की आवाज़ आई, बॉस मेंशन आ गया है। ड्राइवर के ये कहने पर अरमान तुरंत गाड़ी से बाहर उतर गया था। तब तक एक नौकर ने आकर आस्था की साइड से भी दरवाज़ा खोल दिया था। अरमान तुरंत आस्था के बराबर में आकर खड़ा हो गया। तुम्हारे आंसू अभी भी दिखाई दे रहे हैं, याद रखना तुम्हारा एक भी आंसू मेरे दादाजी के सामने दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा कहकर अरमान लंबे लंबे कदम रखता हुआ सीधा मेंशन के अंदर चला गया था। आस्था को अरमान की फिर से वही सारी बातें सुनकर उसे रोना आ गया था। क्या भगवान जी, हाँ हम मानते हैं कि हमने आज परिक्रमा पूरी नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमें इसकी इतनी बड़ी और भयंकर सजा दें। आखिरकार हमारा कसूर क्या है, भगवान जी हमने किया क्या है। आस्था ऊपर की ओर देखकर खुद से बातें करने लगी थी। अरमान, जो कि मेंशन में एंट्री ही करने वाला था, अचानक रुका। उसने पीछे मुड़कर आस्था की ओर देखा, जो कि ऊपर आसमान की ओर देखकर बातें कर रही थी। उसने तुरंत अपने सर पर हाथ मार लिया और सोचने लगा कि ये आफत ने एक बार फिर से मेरी शिकायतों का पिटारा अपने भगवान के सामने खोलकर बैठ गई है।